दिन भर तारीख 25 नवंबर दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहन लाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिंधु के पानी का इस्तेमाल करेगा भारत।
ये हिंदू वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, वो पानी लाने के लिए कृत संकल्प।
नोटबंदी पर संसद में हंगामा है जारी, विवेचना में सुनिए फिरोज गांधी से जुड़े कुछ दिलचस्प प्रसंग।
He should tell Firoz to take up his studies again. Mahatma Gandhi replied that if I had 7 boys like Firoz, we would get freedom within a week.
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के भटिंडा में एक रैली को संबोधित करते हुए सिंधु के पानी के बहाने पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सिंधु नदी का जो बूंद बूंद पानी पाकिस्तान चला जाता है वो पंजाब को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक से जो जख्म मिला है वो उससे उबर नहीं पाएगा। उन्होंने पाकिस्तानी जनता से आग्रह किया कि वो अपने शासकों से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कहें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है और मौजूदा लाइसेंस के निलंबन के आदेश दिए हैं। पटाखे यहां बेहद लोकप्रिय हैं लेकिन बहुत प्रदूषण करते हैं। इस महीने दिवाली के बाद इसकी वजह से दिल्ली में लोगों को गहरी धुंध यानी स्मॉग से जूझना पड़ा था। कोर्ट ने यह फैसला उन 3 नवजात शिशुओं की तरफ से की गई याचना पर सुनाया, जिसमें कहा गया था कि उनके फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं हो सके हैं और वो पटाखों से होने वाले प्रदूषण को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने यूरोपीय यूनियन को धमकी दी है कि अगर यूरोपीय यूनियन ने उन्हें मजबूर किया तो वो हजारों शरणार्थियों को यूरोप में प्रवेश की अनुमति दे देंगे। उन्होंने तुर्की की यूरोपियन यूनियन की सदस्यता पर बातचीत रोकने के लिए यूरोपियन संसद के गैर बाध्यकारी वोट के बाद ये धमकी दी। ये वोटिंग तुर्की में जुलाई में हुए असफल तख्ता पलट के प्रयास के बाद की प्रतिक्रिया के तहत की गई थी। राष्ट्रपति एर्दोगान ने यूरोपीय यूनियन पर इस साल हुए समझौते का वादा तोड़ने का आरोप लगाया। तुर्की को सहायता देने और जल्दी सदस्यता देने का वादा किया गया था, जिसके बदले में तुर्की यूरोप जा रहे शरणार्थियों को रोकने की बात कर रही थी। एर्दोगान ने कहा, जब 50,000 शरणार्थी सीमावर्ती शहर कैपिकुले पहुंचे तो आप रोने लगे। अगर तुर्की सरहद के दरवाजे खोल देगा तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर ये और आगे तक चलता है तो सरहद के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आप ये जानते हैं कि ना मैं ना ही ये मेरा देश खोखली धमकियों से डरता है। ये थे रेचेप तैयब एर्दोगान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पेरिस में पिछले हफ्ते हुए 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद फ्रांस की राजधानी में सुनवाई हुई, जहां पर अभियोक्ता मोलिन ने कहा कि ये लोग गुरुवार को आतंकी हमले की योजना कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 4 फ्रेंच और 1 मोरक्कन व्यक्ति मोबाइल ऐप के जरिए इराक और सीरिया में मौजूद आईएस कमांडर से आदेश ले रहे थे। उनका कहना है कि छापे के दौरान इन्हें कई हथियार और ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें आईएस का महिमा मंडन है और मौत और शहादत का गुणगान किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार और कई साल तक अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक रहे दिलीप पटगांवकर का पुणे में निधन हो गया। वो 72 वर्ष के थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत आज भारत से कर रहे हैं। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के भटिंडा में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक से जो जख्म मिला है वो उससे उबर नहीं पाएगा। जब हमारे जवानों ने ये स्ट्राइक की थी तो सीमा पर हड़कंप मच गया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु जल समझौते का भी जिक्र किया और कहा कि इसका पानी भारत के लिए है।
3 नदियों का पानी, उसमें जो हिंदुस्तान के हक का पानी है, ये मेरे किसान भाइयों के हक का पानी है। वो पानी आपके खेत में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के माध्यम से समंदर में बह जाता है। मैंने एक टास्क फोर्स बनाया है। ये हिंदू वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए कृत संकल्प।
प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि बूंद बूंद पानी देश की राज्यों के लिए काम आएगा। सिंधु जल समझौते को दो देशों के बीच जल विवाद का एक सफल अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण बताया जाता है। 56 साल पहले भारत और पाकिस्तान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों के बीच कई युद्ध हुए और करगिल का युद्ध हुआ, हजार दिक्कतें आईं, लेकिन ये संधि कायम है। उड़ी चरमपंथी हमले में 18 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बाद एक बार कयास लग रहे थे कि भारत सिंधु जल समझौते को रद्द कर सकता है। इसके बाद आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु जल समझौते की बात की। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं? क्या ये भाषण चुनाव की कगार पर खड़े पंजाब के लिए जुमला है? इसके मायने क्या निकाले जाएं? विश्लेषण के लिए मैंने बात की इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल से और पूछा, प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं इसके मायने क्या है और क्या पानी को रोकना संभव है?
जो उस समय बात उठी थी वो थी सिंधु नदी का जो पानी है उससे संबंधित समझौते को रद्द करने की बात उठी थी। आज प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं वो तीन नदियों के पानी की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 6 नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये 5 नदियां सहायक हैं सिंधु नदी की। कुल मिलाकर 6 नदियां हैं, तो तीन नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आया था, 3 भारत के हिस्से में आई। अब प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं उसका संदर्भ ये है कि वो एक तो 3 नदियों के हिस्से की बात कर रहे हैं जो हमारे हिस्से का पानी है, दूसरा सतलुज यमुना लिंक कैनाल को लेकर के पंजाब के अंदर एक नया ज्वलंत विषय बना हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि पंजाब ने जो सतलुज यमुना लिंक कैनाल बनाने से संबंधित जो अब तक कार्रवाई की थी, जो रद्द कर दी थी नया बिल पास करके कि हम नहर नहीं बनाएंगे तो हरियाणा में पानी ले जाए, उसको रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। इस विषय के ऊपर अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे चुके हैं कांग्रेस के नेता लोकसभा से, और विधायक जो हैं अपनी सदस्यता विधानसभा की छोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री उस संदर्भ में बात कर रहे हैं,
तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से इस पानी का कोई लेना देना नहीं है?
नहीं नहीं नहीं, अब वो क्या बात कह रहे हैं कि जो भारत के हिस्से का पानी है उसका पूरा उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो कि सत्य बात है, क्योंकि हमने पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है पानी के भंडारण की और वितरण की। तो वो संकल्प कर रहे हैं ऐसी व्यवस्था करने का कि भारत के हिस्से का पानी जो है वो पंजाब के किसान भी उसका उपयोग कर सके।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिछली बार जब बात हुई थी तो सिंधु जल समझौते को रद्द करने की बात थी, और इस बार अपने हिस्से का पानी जो है उसका समुचित दोहन किए जाने की बात हो रही है।
जी जी जी।
लेकिन साथ में वो जिस तरह से बात कर रहे हैं पाकिस्तान का नाम लेकर कि भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया और भारत की सेना के बारे में वो बखूबी जानते हैं, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं या फिर से एक बार चेतावनी के सुर उनके हो रहे हैं?
पंजाब सीमांत प्रदेश है जिसकी बड़ी सीमा पाकिस्तान से लगती है, दूसरा वो सीधा पाकिस्तान के साथ अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तनाव होता है तो उसका सीधा असर पंजाब के लोगों पर भी पड़ता है। सेना के अंदर पंजाब से बहुत भारी संख्या में लोग भर्ती होते हैं, तो पाकिस्तान का उल्लेख करके, सेना के शौर्य की बात करके वो उस जगह उसके साथ तालमेल बैठा रहे हैं, लेकिन उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, वो ऐसा कहना स्वाभाविक है।
चुनावी भाषण है ये?
बिल्कुल चुनावी भाषण है।
वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का विश्लेषण कर रहे थे। उधर संसद के शीतकालीन सत्र पर सरकार के नोटबंदी के फैसले का असर लगातार बरकरार है। 8वें दिन भी विपक्ष ने हंगामा जारी रखा। आज इसे एक नई वजह दी प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान ने जिसमें उन्होंने विरोध कर रहे लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सरकार ने उन्हें काले धन को ठिकाने लगाने की तैयारी का मौका नहीं दिया। विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया और सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। संसद में आज क्या कुछ हुआ दिनभर, हमारे सहयोगी रोहित जोशी ने नजर रखी है।
संसद में शीतकालीन सत्र का आज 8वां दिन था और फिर मुद्दा छाया रहा सरकार के नोटबंदी के फैसले का। राज्यसभा के आज के सत्र की शुरुआत होते ही विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लेकर हंगामा मचा दिया। संविधान के डिजिटल संस्करण के विमोचन के मौके पर संसद में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान दिया था।
भ्रष्टाचार, काला धन, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई देश लड़ रहा है। आलोचना यह है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा यह नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की, ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया।
राज्यसभा के सत्र की शुरुआत होते ही विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। विपक्ष का कहना था कि प्रधानमंत्री ने अपने बयान में सारे विपक्ष को भ्रष्ट बताकर उसका अपमान किया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा,
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुमारी जी जो भाई अलाउड एलओपी उस पे माननीय प्रधानमंत्री जी को
कुमारी जी एलओपी स्पीकिंग सो यू शुड
सदन से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि अपोजिशन पार्टी
बट लिसन
मनी
श्री मनोज
में है
नो
ये
लिसन लिसन वन सेकेंड
पूरी
जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव ने प्रधानमंत्री के बयान पर एतराज जताते हुए कहा कि यह एक गंभीर मसला है।
लाइब्रेरी में ये कहा गया कि पूरा अपोजिशन को यदि हम पहले बता देते तो सारा अपोजिशन अपना काला घर बचा लेता, ये बहुत गंभीर आरोप है।
विपक्ष के आरोपों और सरकार की बचाव की दलीलों के इस हंगामे के चलते सदन को पहले 2:30 बजे तक और फिर पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा के कल के सत्र में लंच से पहले प्रधानमंत्री मोदी खुद भी शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने सदन को संबोधित नहीं किया। इस पर विपक्षी सांसदों के विरोध के बाद कल दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया था। आज प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए। विपक्ष ने इसे सदन का अपमान बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर नोटबंदी पर चर्चा से बचने के आरोप लगाए। संसद पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए मोदी पर निशाना साधा।
लोकसभा के एमपी हैं, प्रधानमंत्री भी लोकसभा के एमपी हैं। हम अपनी बात रखेंगे, ऑपोजिशन के लोग अपनी बात रखेंगे, डिस्कशन हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। मोदी जी पहले हंस रहे थे, आपने देखा हंसी आ रही थी, फिर कितनी बार 3-4 बार रोना आया है कि हाउस में आइए और फिर देखिए क्या होता है।
लोकसभा में भी सरकार के नोटबंदी के फैसले को लेकर हंगामा रहा और सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। रोहित जोशी, बीबीसी दिल्ली।
और अब आपको बताते हैं कि कल बीबीसी इंडिया बोल में क्या है चर्चा का विषय।
बीबीसी इंडिया बोल
26 नवंबर 1949 वो दिन जब संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान पारित किया। तब से अब तक भारतीय संविधान में हो चुके हैं 120 से ज्यादा संशोधन। क्या इतने वर्षों के बाद अब भारतीय संविधान को एक नए नजरिए से देखे जाने की जरूरत है? यही है इस हफ्ते बीबीसी इंडिया बोल का विषय। शनिवार 26 नवंबर को शाम 7:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त डायल करें 1800-102-7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
विवेचना में पिछले दिनों हमने भारत के दो तेज तर्रार सांसदों भूपेश गुप्ता और पीलू मोदी पर विवेचना प्रसारित की थी। उसी कड़ी में एक और नाम है फिरोज गांधी का, जिन्होंने रायबरेली से 2 बार सांसद रहते हुए काफी नाम कमाया और जिनकी सक्रियता की वजह से तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कर कृष्णामाचारी को इस्तीफा देना पड़ा था। हाल ही में एक स्वीडिश पत्रकार बर्टिल फॉक ने कई दशकों के शोध के बाद उनकी जीवनी लिखी है, फिरोज द फॉरगेटन गांधी। फिरोज गांधी से जुड़े कुछ दिलचस्प प्रसंगों पर नजर दौड़ा रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
हमें चीजें सिखाते थे, वो अपने हाथ से बहुत काम करते थे, बहुत चीजें सीखी। सत्य के रास्ते पर मजबूती से चलना, कुछ कहने के पहले करने के पहले अपनी होमवर्क ठीक से कर लेना और पूरी तैयारी करके किसी चीज पर आगे बढ़ना। लेकिन शायद सबसे ज्यादा असर मुझ पर पड़ा है उन्होंने जो एक डिग्निटी ऑफ लेबर मुझे सिखाया, हाथ से काम करने का, शर्माना नहीं, पीछे नहीं हटना।
ये थे राजीव गांधी अपने पिता फिरोज गांधी को याद करते हुए। आज अगर लोगों से फिरोज गांधी का जिक्र किया जाए तो ज्यादातर लोगों के मुंह से यही निकलेगा, फिरोज गांधी कौन? बहुत कम लोग इस बात को याद कर पाएंगे कि फिरोज गांधी न सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के दामाद, इंदिरा गांधी के पति और राजीव और संजय गांधी के पिता थे, बल्कि बहुत ही प्रखर और प्रतिभाशाली सांसद भी थे। मैंने फिरोज द फॉरगॉटन गांधी के लेखक बर्टिल फॉक, जो कि इस समय दक्षिणी स्वीडन के एक गांव में रह रहे हैं, से संपर्क कर पूछा कि आपने फिरोज गांधी की जीवनी लिखने का फैसला क्यों किया।
When I interviewed Indira Gandhi, I saw that she had two sons and grandchildren, and I asked myself, where is the husband, the father of her children?
जब मैंने इंदिरा गांधी का इंटरव्यू लिया तो मैंने देखा उनके दो पुत्र और एक पौत्र और पोत्री थे। मैंने अपने आप से पूछा, इनके पति और इनके बच्चों का बाप कहाँ है? जब मैंने लोगों से ये सवाल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका नाम फिरोज था और उनकी कोई खास भूमिका नहीं थी। लेकिन जब मैंने और खोज की तो मुझे पता चला कि वो न सिर्फ भारतीय संसद के एक अहम सदस्य थे, बल्कि उन्होंने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का बीड़ा भी उठाया था। मेरे विचार से उनको बहुत अनुचित तरीके से इतिहास के हाशिए में ढकेल दिया गया। इस जीवनी को लिखने का एक और कारण था कि कोई दूसरा ऐसा नहीं कर रहा था।
बटिल फॉक के शब्द, दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स होगा जिसका ससुर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पहला प्रधानमंत्री हो और बाद में उसकी पत्नी और उसका पुत्र भी उस देश का प्रधानमंत्री बना हो। नेहरू परिवार पर नजदीकी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं,
फिरोज गांधी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले जो उनका निधन हो गया 1960 में, और उसके बाद वो एक तरीके से गुमनामी में चले गए। लोकतंत्र में ऐसे बहुत कम ऐसे शख्स होंगे जो खुद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के अलावा जो थे, जिनके ससुर देश के प्रधानमंत्री बने, जिनकी पत्नी देश की प्रधानमंत्री बनी और बेटा भी जो था वो प्रधानमंत्री बना, और उसके अलावा तमाम उनके परिवार से जितने जुड़े हुए लोग हैं, जैसे मेनका गांधी केंद्रीय मंत्री हैं, वरुण गांधी लोकसभा के एमपी है, कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम उनके परिवार के जुड़े हुए लोग हैं, वो एक लोकतंत्र में उन्होंने बड़ी बड़ी पोजीशन और लोकप्रियता पाई। क्योंकि डिक्टेटरशिप में या बादशाहत में तो ऐसा होता है, लेकिन लोकतंत्र में जहां लोग चुनते हो, तो ये एक बहुत बड़ी फिरोज गांधी की उपलब्धि है। तो उस तरीके से वो नेहरू गांधी परिवार की या जो डायनेस्टी की बात की जाती है, उस डायनेस्टी में उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था जिसका कोई जिक्र नहीं होता, जिसपे कोई चर्चा नहीं होती।
फिरोज गांधी की आनंद भवन में एंट्री कमला नेहरू के जरिए हुई थी। एक बार कमला नेहरू इलाहाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज में धरने पर बैठी हुई थी। बर्टिल फॉक फरमाते हैं,
He liked her very much. He was sitting on a wall when she was shouting slogans against the British. And then it was a very hot day and she fell down and
वो कमला को बहुत पसंद करते थे। एक बार जब कमला ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगा रही थी तो फिरोज कॉलेज की दीवार पर बैठकर नजारा देख रहे थे। वो बहुत गर्म दिन था। अचानक कमला नेहरू बेहोश हो गईं। फिरोज दीवार से नीचे कूदे और कमला के पास दौड़कर पहुंच गए। सब छात्र कमला को उठाकर एक पेड़ के नीचे ले गए। पानी मंगवाया गया और कमला के सिर पर गीला कपड़ा रखा गया। कोई दौड़कर एक पंखा ले आया और फिरोज उनके चेहरे पर पंखा करने लगे। जब कमला को होश आया तो वो सब कमला को लेकर आनंद भवन गए। इसके बाद कमला नेहरू जहां जाती, फिरोज गांधी उनके साथ जरूर जाते।
इसकी वजह से फिरोज और कमला के बारे में अफवाहें फैलने लगी। उनके बारे में कुछ शरारती लोगों ने इलाहाबाद में पोस्टर भी लगा दिए। जेल में बंद जवाहरलाल नेहरू ने इस बारे में जानकारी लेने के लिए रफी अहमद किदवई को इलाहाबाद भेजा। इस बात को उन्होंने पूरी तरह से बेबुनियाद पाया। बटिल फॉक बताते हैं कि एक बार स्वतंत्र पार्टी के नेता मीनू मसानी ने उन्हें एक रोचक किस्सा सुनाया था।
He was house guest at Anand Bhavan in the 1930s, and all of a sudden Nehru said, "Can you believe that someone could be fall in love with my wife?"
30 के दशक में वो आनंद भवन में मेहमान थे। वो नाश्ता कर रहे थे कि अचानक नेहरू ने उनकी तरफ मुड़कर देखा। मीनू, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि कोई मेरी पत्नी के प्रेम में फंस सकता है? मीनू ने तपाक से कहा, मैं खुद उनके प्रेम में पड़ सकता हूँ। इस पर कमला तो मुस्कुराई, लेकिन नेहरू ने उनकी तरफ गुस्से से देखा।
बहरहाल फिरोज का नेहरू परिवार के साथ उठना बैठना इतना बढ़ गया कि ये बात उनकी माँ रतिमाई गांधी को बुरी लगने लगी। जब महात्मा गांधी इलाहाबाद आए तो उन्होंने उनसे कहा कि वो फिरोज से कहें कि वो पढ़ाई में अपना मन लगाएं।
The funeral of Motilal Nehru, that Mahatma Gandhi came to Allahabad and Ratimai Gandhi went there and asked, said that he should tell Firoz to take up his studies again. But
मैं समझता हूँ जब मोतीलाल नेहरू के अंतिम संस्कार में भाग लेने महात्मा गांधी इलाहाबाद आए तो रतिमाई उनके पास गईं और गुजराती में बोली कि वो फिरोज को समझाएं कि वो खतरनाक कामों में हिस्सा लेकर अपना जीवन बर्बाद ना करे। गांधी जी ने उनको जवाब दिया, बहन अगर मेरे पास फिरोज जैसे 7 लड़के हो जाएं तो मैं 7 दिनों में भारत को स्वराज दिला सकता हूँ।
1942 में तमाम विरोध के बावजूद इंदिरा और फिरोज का विवाह हुआ, लेकिन साल भर के अंदर ही दोनों के बीच मतभेद होने शुरू हो गए। इंदिरा गांधी ने फिरोज के बजाय अपने पिता के साथ रहना शुरू कर दिया और फिरोज का नाम कई महिलाओं के साथ जोड़ा जाने लगा।
मुझे लगता है कि इसमें वो उनका एक लोनलीनेस का एक एलिमेंट जरूर रहा होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी दिल्ली में रहती थी, वो लखनऊ में रहते थे, और दोनों के बीच में उस तरह का एक जो आइडियल हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो उस तरह का नहीं डेवलप हो पाया। फिरोज गांधी स्मार्ट थे, बोलते बहुत अच्छा थे, उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, तो महिलाएं जो थी उनकी तरफ खींचती थी। एक नेहरू परिवार की भी एक लड़की जो थी जो नेशनल हेल्ड में काम करती थी, वो नेशनल हेल्ड के डायरेक्टर हो गए थे, मैनेजर थे, वहां पर थी, उनके साथ भी अफेयर की अफवाह उड़ी। फिर उसके बाद एक उत्तर प्रदेश के एक बड़े सीनियर मुस्लिम लीडर थे, मिनिस्टर थे, उनकी बेटी के साथ में भी फिरोज गांधी का नाम जुड़ा और नेहरू से बहुत विचलित हो गया और उन्होंने जो रफी अहमद किदवाई जो केंद्र में मंत्री थे उनको भेजा। रफी अहमद किदवाई ने पहले वो मुस्लिम मंत्री को समझाया बुझाया, लड़की को समझाया, फिर फिरोज गांधी को समझाया, और फिरोज गांधी तो ऐसा भी सुनने में आया कि उस समय इंदिरा गांधी से अलग हो करके और उस लड़की से शादी भी करने को तैयार थे, लेकिन वो तमाम मामला बड़ी मुश्किल से सुलझाया गया। इंदिरा गांधी जब भी लखनऊ जाती थी उन्हें पता चलता था कि ये महिला ऐसे है, ये ऐसे हैं, और उसमें लेकिन फिरोज गांधी के मित्रों का मामला का कहना यह है कि वो फिरोज गांधी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे, उन्हें बस एक मनमौजी किस्म के आदमी थे, उन्हें अच्छा लगता था लोगों से बात करने में। एक मंत्री थी बाद में उनका क्योंकि नाम भी आया ताकेश्वरी सिन्हा, उनसे भी काफी ज्यादा फिरोज गांधी की नजदीकियां थी। ताकेश्वरी सिन्हा का खुद कहना यह था कि अगर दो मर्द जो होते हैं वो अगर चाय कॉफी पीने जाएं या लंच साथ में करें तो उसमें समाज को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन एक महिला और एक पुरुष अगर साथ में भोजन कर रहे हैं तो लोग उस पर तरह तरह की टिप्पणियां करने लगते हैं। तो उनका इशारा यह था कि सिर्फ दोस्ती को लोग गलत निगाहों से भी देखते हैं, शक और शुबे से देखते हैं।
इस बीच इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा बन गई और उनकी पहल पर केरल में नंबूदरी पाद की सरकार बर्खास्त कर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इस मुद्दे पर इंदिरा और फिरोज के बीच गहरे राजनीतिक मतभेद भी पैदा हो गए। एक बार मुझसे बात करते हुए इंदर मल्होत्रा ने बताया था,
1959 में जब इंदिरा ने कम्युनिस्ट सरकार को गिराया अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से केरला में, तो उस पे मियां बीवी में बड़ी सख्त झगड़ा हुआ। तो उस रोज वो शाम को मिले मुझको और कहने लगा कि भाई देखो कुछ लोग आपको कुछ उल्टा सीधा बताएंगे इस बारे में, मैं आपको आज से बता दूं कि सख्त झगड़ा हुआ मेरा और आज से मैं कभी प्राइम मिनिस्टर के घर में नहीं जाऊंगा। एंड ही केप्ट हिज वर्ड। बस वो जब उनकी मौत हो गई तो उस वक्त उनको ले जाया गया 3 मूर्ति हाउस में, उसके बाद वो कभी नहीं गए।
इस बीच फिरोज गांधी संसद में अपने भाषणों से सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। मुंधड़ा कांड पर उन्होंने अपने ही ससुर की सरकार पर इतना जबरदस्त हमला बोला कि नेहरू के बहुत करीबी तत्कालीन वित्त मंत्री टीटी कृष्णमाचारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये कहा जाने लगा कि कांग्रेस में रहते हुए भी फिरोज विपक्ष के अनऑफिशियल नेता हैं। फिरोज के नजदीक रहे और इस समय रायबरेली में रह रहे ओंकारनाथ भार्गव याद करते हैं।
मुझे अच्छी तरह याद है कि निधन के बाद मैं गया था पार्लियामेंट में, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे मनु लाल जी, ले गए थे पार्लियामेंट में, सेंट्रल हॉल में लॉबी थी, एक फिरोज गांधी कॉर्नर कहलाता था, वहाँ फिरोज गांधी बैठते थे और एमपी बैठते थे, चीज़ों की स्टडी होती है। आज की तरह से नहीं कि जो हुआ शोर मचाना शुरू किया, फिरोज गांधी ने लेवल ऑफ डिबेटिंग और लेवल ऑफ पार्लियामेंट्री एक्शन को बहुत ऊंचा किया है। यही चीज़ है जो बर्टल फाग ने कहा कि फॉरगॉटन गांधी, उसका पत्र आया अभी मेरे पास, ईमेल है, मैंने कहा नो ही विल नॉट बी फॉरगॉटन, बिकॉज जैसे जैसे देश की स्थिति बदलेगी, जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ आएगी, आप आएंगे फिरोज गांधी विल रिमेंबर्ड एज द फाउंडर ऑफ करेक्ट प्रैक्टिस इन द पार्लियामेंट।
फिरोज को हर चीज की गहराई में जाना पसंद था। 1952 में वो बहुत बड़े अंतर से जीत कर लोकसभा पहुंचे थे। 1957 के चुनाव के दौरान उन्हें पता चला कि उनके पुराने प्रतिद्वंदी नंद किशोर नाई के पास चुनाव में जमानत के लिए भी पैसे नहीं हैं। उन्होंने नंद किशोर को बुलाकर अपनी जेब से जमानत के लिए पैसे दिए।
उनकी पर्सनालिटी बहुत ऊंची थी, उनका संबंध एक भारत का अति प्रतिष्ठित प्राइम मिनिस्टर और इंदिरा जी के संग था, वो हमारे सांसद थे के संग सप्लीमेंट ये था कि नेहरू जी के जमात थे, इंदिरा जी के पति थे, ये बड़ी भारी लोगों को सेटिस्फेक्शन भी था, अच्छाई भी थी। वो बराबर घूमते थे, कहीं दाई चना खाते थे, कहीं चाट खा लेते थे, कहीं चारपाई जाके बैठ जाते थे, इससे ज़्यादा सिंपल कौन होगा।
कहा जाता है कि राजीव गांधी और संजय गांधी में वैज्ञानिक सोच पैदा करने का श्रेय फिरोज गांधी को दिया जाता है।
फिरोज गांधी एक बहुत अलग किस्म के बाप थे। वो कभी भी बच्चों को खिलौने देने पर उनका यकीन नहीं था, और वो अगर कोई खिलौना देता था तो उसको खिलौने को अलग करके वो कहते थे कि इसको फिर से फिक्स करके देखो करते हैं क्या करते हैं। तो बहुत सारे प्रयोग करते थे, कारपेंट्री का जो बढ़ई का काम होता है वो बहुत शौक था, गार्डनिंग का बहुत शौक था, और संजय और राजीव दोनों का जो एक टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड वो फिरोज गांधी की देन है। फिरोज गांधी ने बच्चों को इस तरह से जो एक कहते हैं बड़े घर के और उनको हर चीज मिल जाए वो न दे करके उन्होंने उनको हर चीज के इसको समझो कि ये इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, ये चीज कैसे बनी है, वो उस तरह का उन्होंने टेम्परामेंट डेवलप किया जो संजय गांधी में ज्यादा आया। जो उन्होंने पूरी मारुति कार का भी एक उन्होंने प्रयोग किया, उसके बारे में तरह तरह की बातें हैं, लेकिन एक माइंडसेट की जो बात थी वो राजीव और संजय दोनों का उन्होंने टेक्नोलॉजी की तरफ प्रोत्साहन किया।
फिरोज का बागबानी के अलावा बढ़ई का काम करने का भी शौक था। उन्होंने ही इंदिरा गांधी को थिएटर और पश्चिमी संगीत का चस्का लगाया था।
He talked Indira listening to Beethoven, I think, and he also took Indira and Santa Gandhi in London to operas and operettas and concerts.
उन्होंने इंदिरा गांधी को बीथोवन सुनना सिखाया। लंदन प्रवास के दौरान वो इंदिरा और शांता गांधी को ओपरा और नाटक दिखाने ले जाया करते थे। बाद में इंदिरा गांधी ने लिखा, मेरे पिता ने कविता के प्रति मेरे मन में प्यार पैदा किया, लेकिन संगीत के लिए मेरा प्यार फिरोज की वजह से जागा। एक बार डॉम मॉरिस ने इंदिरा से पूछा था, आपको सबसे ज्यादा सदमा किस मौत से हुआ? इंदिरा का जवाब था, मेरे पति, क्योंकि वो अचानक इस दुनिया से चले गए थे। उनके शब्द थे, परहैप्स आई डिडंट लाइक फिरोज बट आई लव्ड हिम।
रेहान पटेल, बीबीसी दिल्ली।
फिरोज गांधी के कुछ दिलचस्प प्रसंग सुना रहे थे रेहान फजल, और अब कार्यक्रम में बात करेंगे खेल समाचारों की। आदेश कुमार गुप्त जी मौजूद हैं। आदेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो पीवी सिंधु का जो मैच चल रहा है तो उसका क्या हुआ?
जी देखिए, पीवी सिंधु तो बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं और वो हांगकांग ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, लेकिन अगर भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की बात की जाए तो उनकी चुनौती आज क्वार्टर फाइनल में ही टूट गई। पांचवीं वरीयता के साथ खेलने वाली साइना नेहवाल क्वार्टर फाइनल में गैर वरीयता हासिल हांगकांग की चिंग रगान से 1 घंटे 11 मिनट के संघर्ष के बाद 21-8, 18-21, 21-19 से हार गई। उनके अलावा पुरुष एकल वर्ग में भारत के अजय जयराम भी हार कर बाहर हो गए। उन्हें हांगकांग के लॉन्ग एंगस ने 21-15, 21-14 से मात दी। लेकिन पिछले दिनों चाइना ओपन अपने नाम करने वाली भारत की पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर की जियाऊ लियांग को 1 घंटे 19 मिनट तक चले कड़े संघर्ष के बाद 21-17, 21-23, 21-18 से हराया, और अभी ये देखना बाकी है कि एक और खिलाड़ी भारत के समीर वर्मा वो किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगले कार्यक्रम में हम उसकी जानकारी जरूर देंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के भटिंडा में एक रैली को संबोधित करते हुए सिंधु के पानी के बहाने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधु नदी का बूंद बूंद पानी पाकिस्तान को जो चला जाता है वो पंजाब को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है और मौजूदा लाइसेंस के निलंबन के आदेश दिए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने यूरोपीय यूनियन को धमकी दी है कि अगर यूरोपीय यूनियन ने उन्हें मजबूर किया तो वो हजारों शरणार्थियों को यूरोप में प्रवेश की अनुमति दे देंगे। पेरिस में पिछले हफ्ते गिरफ्तार हुए 5 लोगों की फ्रांस की राजधानी पेरिस में अगले गुरुवार को आतंकवादी हमले की योजना थी, ये कहना है फ्रांस के अभियोक्ता का। वरिष्ठ पत्रकार और कई साल तक अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक रहे दिलीप पटगांवकर का पुणे में निधन हो गया, वो 72 वर्ष के थे। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाला था शाकिर आलम ने। 1.5 घंटे बाद घटना चक्र कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। फिलहाल मोहनलाल शर्मा को अनुमति दें। नमस्कार।